अगर यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए यहोदा पहले अध्याय, एक ही अध्याय, उसमें एक पद से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग ने पढ़ा है एक पद से लेकर 16 पद तक। यहोदा कई बातें, मतलब इतिहास पुराने नियम से कई बातें उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। मूसा के बारे में लिखा है, स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, और सदोम और अमोरा के बारे में लिखा है, इनोक, आदम, अलग अलग बहुत से नाम, बहुत से पुराने नियम का नाम इस पत्री में यहूदा ने लिखा है। हम आगे धीरे धीरे देखेंगे क्यों इतना बातें यहूदा ने लिखा है। लगभग मान के चलिए पूरा बाइबल जो उत्पत्ति किताब से शुरू कर मतलब आखिरी प्रकाशित वाक्य तक उन्होंने ऐसा पूरा लग रहा है कि इस 16 पद में हम लोग को कोशिश किया पूरा समझाने के लिए। याकूब ये नहीं लिखा है, ठीक है, ये लोग गलत शिक्षक लोग हैं। बार 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 आप ध्यान दीजिएगा, गलत शिक्षाओं का चरित्र और उनकी सेवा लोगों के, अगर गहराई से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा ये गलत शिक्षकों का चरित्र के बारे में, उन लोग के व्यवहार के बारे में, उन लोगों का लेने देने के बारे में साफ रीति से उन लोगों ने लिखा। ये नहीं लिखा कि अच्छा ये गलत शिक्षक है तो क्या गलत शिक्षक सिखा रहा, ये साफ रीति से नहीं बोला, पर ज्यादा से ज्यादा इसकी जो ध्यान है इनकी जीवन के ऊपर। ऐसा लोग बहुत भयंकर लोग, दूसरों का जीवन भी नाश करेगा और खुद का जीवन भी नाश कर देगा। ऐसा लोगों के लिए ये चिट्ठी यहूदा ने लिखा है। ऐसा लोग अगर यदि आप नोट्स ले रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, एक बात है जरूर, परमेश्वर सबका न्याय करेगा, जरूर परमेश्वर सबका न्याय करेगा, विशेष रीति से परमेश्वर अधर्मियों का न्याय करेगा, परमेश्वर अधर्मियों का न्याय करेगा। ऐसा लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। ऐसा लोग कहाँ जाएंगे जो गलत शिक्षक लोग? नरक जाएंगे। जैसा हम लोग कहते ना, अरे स्वर्ग अनंत काल का है, बार बार कहते ना, बार बार कहते हैं हम लोग एक दिन मरने के बाद हम प्रभु के सामने, प्रभु के साथ हम लोग हमेशा के लिए रहेंगे, हमें हमेशा के लिए आनंदित रहेंगे। हम लोग कहते कि नहीं कहते? बहुत से बार सुनते हैं, बहुत से बार दुआ में भी सुनते हैं और दुआ करते भी हैं। वैसे ही नरक भी अनंत काल के लिए। मैं ये नहीं कोशिश कर रहा कि आप लोग डराने के लिए, ठीक है, मैं क्योंकि वचन में लिखा है साफ साफ, वचन में अगर 5, 6 और 7 पद हम लोग देखेंगे, नरक भी अनंत काल के लिए है, बहुत भयानक है। हम लोग शायद अगर एक घंटे के लिए, हम लोग मान लीजिए इस रूम में कोई लाइट नहीं है और हवा नहीं है, बहुत अंधकार में अगर बंद कर दिया कैसा रहेगा, रह पाएंगे हम लोग? नरक उससे भी बढ़कर है, नरक उससे भी बढ़कर है। मैं तो पहले सोचता था कि कई बार उदाहरण भी, इसका उदाहरण भी दिया मैंने, मछुआरों को जानते ना, मछली पकड़ने का भी कोशिश किया आप लोग? अच्छा कुछ लोग किया, वेरी गुड। जब मछली वो लोग पहले से अच्छे से तैयारी करेंगे सामग्री ये सब, और कभी कभी सुबह 3 बजे 4 बजे ये लोग अपना नाव लेके जाते समुद्र में, कई बार 2 घंटा लगता है, कई बार 5 घंटा लगता है। ये लोग क्या करते हैं, पूरा मेहनत करके मछली पकड़ के किनारे, पकड़ने के बाद किनारे लेके आते हैं, आने के बाद किनारे बैठेंगे, आराम से बैठकर जो अच्छा मछली है ये लोग अपने पास रख लेंगे और जो बेकार मछली है वापस पानी में फेंक देंगे, क्योंकि बेकार मछली से कोई काम नहीं है ना, तो इसलिए उसको वापस फेंक देंगे। तो मैं ये सोचता, अच्छा परमेश्वर भी एक दिन ऐसा करेगा, जो अच्छा मछली है अपने पास रख लेगा और जो बुरा मछली है वो वापस फेंक देगा करके। अब वो जो मछली फेंक दिया वो पानी में फिर वापस जाएगा और आजादी से बढ़िया से अपना जीवन जिएंगे कि नहीं, आराम से फिर पानी में जिएंगे। नरक ऐसा नहीं है, हम लोग आराम से जीवन नहीं जी सकते उधर। नरक ऐसा है अनंत काल की आग, अगर आग में हम लोग हाथ रख के कुछ देर कांप के देखेंगे कैसा रहेगा, 2-3 मिनट इवन 1 मिनट भी अगर हाथ उधर रखना नहीं चाहते हम लोग, अगर अनंत काल की आग है, कौन भैया उस अनंत काल की आग में पड़ना चाहते हैं? कोई इधर है अनंत काल की आग में पड़ना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है कि उस अनंत काल की नरक में जाए, कोई नहीं चाहते है। पर यहूदा यही बात लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं। 5 पद में इन्होंने लिखा है कि
यद्यपि तुम सारे बात को जानते हो, तुम मैं फिर से पांच पद में फिर से याद दिलाता, मैं सारे बातों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। कई बार हम सब लोग को मालूम है बुधवार का बाइबल स्टडी हो गया, फिर भी हम लोग आपको याद दिलाते रहे, भैया आप बुधवार को बाइबल स्टडी में आइए ताकि आप लोग परमेश्वर का वचन सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हम भूल जाते हैं कभी कभी। सो वैसे ही यहूदा इन लोगों को याद दिला रहा है, यदि तुम जानते हो ये सारे काम, ये सारे बात पहले से सुन चुका हो, क्योंकि ये यहूदी लोग बहुत अच्छी रीति से पुराना नियम को वो लोग जानते हैं, बहुत अच्छी रीति से। इसलिए ये कह रहे हैं, यद्यपि आप लोग जानते हैं इस बात को, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको ताकि आप लोग फिर से सुने, गलत शिक्षकों का पीछे ना जाएं। इसलिए वो याद दिलाना चाह रहा है। ये तो पांच पद में, ये मतलब चार पद में भी यहूदा ऐसा इस पत्री को शुरू कर रहे कि अगर सही मार्ग में नहीं जा रहे एक दिन इनकी न्याय होगा, और साफ कह रहे हैं कि एक दिन न्याय होगा, नहीं तो ये लोग नाश हो जाएंगे। और पांच, छह और सात पद में तीन ऐसा मुख्य घटनाओं को इधर लिखकर इन्होंने उदाहरण दे रहे हैं। एक तो है यहूदाओं के बारे में, और गहरी यहूदाओं के बारे में, और उसके बाद स्वर्गदूत के बारे में। यहूदियों के बारे में पांच पद में, और उसके बाद छह पद में देखे तो स्वर्गदूत, और सात पद में गहरी यहूदियों के बारे में। देखिए परमेश्वर, हम लोग दुआ करते हैं परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसमें कोई पाप नहीं है। हम लोग कहते हैं अगर परमेश्वर न्याय नहीं करता है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये परमेश्वर न्याय नहीं, न्याय नहीं है। हम लोग परमेश्वर का है ना, मतलब ऐसा इतना उस न्याय को हम बहुत ऊंचा स्थिति से हम लोग नहीं देखते हैं, उसको नीचा करके, अरे न्याय तो क्या है, परमेश्वर न्याय तो है और परमेश्वर प्रेमी भी तो है, तो बहुत हल्का से परमेश्वर को न्याय को ले लेते हैं हम लोग। इस पांच, छह और सात पद में परमेश्वर ऐसा ऐसा लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, उनकी मतलब ये नहीं कह रहा अरे ये यहूदी लोग हैं जो इजरायली लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अच्छा इनको 50% में न्याय करूंगा, जो गहरी यहूदी लोग हैं इनको 100% में न्याय करूंगा, और ये स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत को मैं 70% न्याय करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहे, चाहे ये इजरायली लोग, चुने हुए लोग है, गहर यहूदी लोग हैं, ये सब लोग आगे देखेंगे ये गलत शिक्षक लोग हैं, ये झूठे लोग, इन लोग के पास कोई आशा नहीं है और ये लोग एक दिन नरक जाएंगे। इवन पहले पत्रस में भी अच्छा, मतलब अब बाद में आप लोग पढ़िएगा दूसरा पत्रस, चार पद से लेकर आठ पद तक, अभी मत को लेकर बाद में पढ़िएगा, पत्रस भी यही बात दोहरा रहे हैं। ये लोग जैसा चार पद में यहूदा कह रहे हैं कि ये लोग चुपके से आगे से कलिसिया में नहीं तो उसके संगति में आ गए, ये लोग चुपके से और परमेश्वर के नाम को तोड़ मोड़ कर रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं और खुद के जीवन को भी धोखा दे रहे हैं ये लोग। पत्रस भी यही बात अगर चार पाँच छः और आठ पद तक पढ़ेंगे तो यही तीन बात पत्रस भी कह रहे हैं। क्यों मतलब ये लोग वैसा है, क्यों ये लोग शुभ संदेश को तिरस्कार करते हैं, क्यों ये लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि वे लोग पाप से दूर नहीं रहना चाहते हैं। इन लोग के लिए पाप बहुत प्रिय है, इन लोग के लिए पाप अपना इच्छा पूरा होना है और पाप इन लोग के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश पर और प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे। पत्रस वही बात कह रहे हैं, पत्रस भी वही बात, ऐसा लोग कलीसिया में भी है, ऐसा लोग हमारा कलीसिया उस समय में भी था और इस समय हमारा कलीसिया में भी है। हम लोग लोगों को बोलेंगे बाय आप पाप छोड़ दो, बाय प्लीज बाय पाप मत करो, लोग मानेंगे, लोग जल्दी से मानेंगे, अरे हमारा घमंड क्या होगा, हमारा घमंड को, क्योंकि ये लोग पाप से प्यार करते हैं, पाप अच्छा लगता है इन लोगों को। इसलिए इतना होने के बाद भी चाहे यहूदा है चाहे पत्रस है, लोगों को ये बात लिखा, ऐसा लोग लोगों का अपने लिए, अपना काम के लिए, अपना जीवन के लिए, अपना इच्छा पूरी करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जो गलत शिक्षक लोग। तो पत्रस भी तीन उदाहरण दिया, एक तो स्वर्गदूत का उदाहरण दिया और दूसरा है जो पुराने नियम न्यू का उदाहरण दिया और उसके बाद सदोम और अमोरा का उदाहरण दिया। सेम बात सेम और लगभग जो यहूदा कह रहे हैं पत्रस भी, मतलब क्यों, मतलब मैं दो बार ये बात को आपको दोहराना चाह रहा हूं, दो दो लोग तीन तीन लोग इस गलत शिक्षकों के बारे में लिखा साफ रीति से। पांच पद में है इज़राइल लोग के बारे में, छह पद में स्वर्गदूत के बारे में, सात पद में सदोम और अमोरा के बारे में। फिर वही बात पत्रस स्वर्गदूत के बारे में लिख रहा है, और नूह का जब समय था उसके बारे में लिखा, और उसके बाद सदोम और अमोरा के बारे में भी लिखा। इस बात में क्या देख रहे हैं, परमेश्वर ने लोगों को बचाया, उसके बाद बचाने के बाद नाश कर दिया। जैसे परमेश्वर ने उद्धार दिलाया उन लोगों को, परमेश्वर ने मुक्ति दिलाया, दिलाने के बाद क्या फिर नाश कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? अंत तक ये लोग विश्वास नहीं किया। अंत तक वे लोग, चाहे स्वर्गदूत, चाहे इज़राइली लोग, चाहे सदोम और अमोरा के लोग, अंत तक इन लोग ने विश्वास नहीं किया। जब तक हमारा जीवन है, हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन हमारा जीवन से परमेश्वर का प्रशंसा होते रहें, परमेश्वर खुश होते रहें। बहुत से लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर का शुभ संदेश को सुनते, सुनने के बाद भी, याद दिलाने के बाद भी लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, ऐसा लोगों को यहूदा पत्रस ये लोग याद दिलाना चाहते हैं। अगर मान ली पांच पद आप लोग देखेंगे, पांच पद आखिर में, कि प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाया। प्रभु ने ये प्रभु कौन है ये प्रभु? बहुत से बाइबल में, बहुत से अलग अलग बाइबल में साफ साफ लिखा है यीशु ने बचाया। आप लोग को मालूम है शुरुआत से जब परमेश्वर ने जो पूरा संसार को बनाया, परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा साथ मिलकर पूरा सृष्टि को बनाया। उत्पत्ति 1:24 में लिखेंगे, परमेश्वर कहते हैं आओ हम मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाए। शुरुआत से देख रहे हैं आप लोग, हम लोग ये नहीं कह सकते कि अरे प्रभु यीशु मसीह जब सृष्टि का समय हुआ था उस समय प्रभु यीशु मसीह था नहीं। बहुत से लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मेहरबानी से कंफ्यूज। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आदि से जब सृष्टि किया था उस समय से लेकर ये त्रियुक्त परमेश्वर ने सब कुछ, सब लोगों को बनाया, और उसके बाद आदम और हवा को बनाया। बनाने के बाद देखिए उन लोग के बीच में जो संगति था बहुत बढ़िया था। परमेश्वर आता था, दोनों से बातचीत करता था, पाप इन लोग के बीच में नहीं था। और परमेश्वर ने कहा पूरा ये सब कुछ मैंने बनाया है ना, सब कुछ मैंने रचा है, ये सब कुछ को देखभाल करो, मेरा अधीनता में रहते हुए इस सारे संसार को देखभाल करो। बट क्या हुआ, एक दिन सांप आया, आंखों ईव को भड़काने लगा, सचमुच में क्या उस पेड़ का फल खाएगा तो मर जाएंगे? नहीं, उन्होंने खाया, खाने के बाद आदम को भी दिया। देखिए आदम, परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया था ना, आदम को बनाया, आदम को आवाज नहीं सुनते हम लोग उधर, बिल्कुल ये भी नहीं कहता है कि वो अरे ये पाप मत करो, ऐसा पाप तुम तो खाए हो, मैं नहीं कहूंगा, एक शब्द भी हम लोग नहीं सुनते आदम का। उसी समय से जब परमेश्वर वापस आके परमेश्वर उन लोग से पूछता है आदम और हवा कहाँ है तुम लोग, ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। क्यों? उसको पता चल गया वे लोग नंगे हैं करके, शर्मिंदा होके पेड़ के पीछे छुप जाते। उस समय भी आदम कहते कि जो स्त्री ने आपने दिया ना प्रभु, इसका गलती है, मेरे कोई गलती नहीं है, इन्होंने वो पेड़ का फल खाया, कहा कि मेरे को दिया, मैंने कहा। जब परमेश्वर उससे पूछता है प्रभु ये तो मेरा गलती नहीं है, ये तो ये जो सांप ने आपने बनाया ना, ये स्वर्गदूत है ना, उसका गलती है। वैसा करके मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए। उस समय से लेकर आगे हम लोग देखते हैं, चाहे इसहाक हो चाहे याकूब हो, करते 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 निर्गमन का कहानी में पहुंचते हैं। यूसुफ का नाम कितना लोग जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं ना यूसुफ, उधर का मतलब ऐसा बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाते हैं और पूरा राजा उसका पूरा अधिकार देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं प्रभु ने मिस्र से एक कुल को बचाया, जो लोग ने विश्वास नहीं किया उनको नाश कर दिया। मिस्र से मतलब ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया? उधर से जब यूसुफ का मृत्यु होने के बाद इज़राइली लोग, जब निर्गमन का 1 आप लोग पढ़ते हैं, इज़राइल लोग बहुत संख्या में बढ़ जाते हैं, सामर्थ्य में भी बढ़ जाते हैं। जब नया राजा आता है वो यूसुफ को नहीं जानता था, वो देख कर कहते हैं, अरे लग रहा है कि ये तो बहुत कतरा है, ये इसराइल लोग हैं, ये लोग संख्या में भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद सामर्थ्य में भी बढ़ रहे हैं, ये लोग बढ़िया काम भी कर रहे हैं। वो ऐसा करते हुए वो क्या करता है कि ठीक है, अगर जो भी जो अगर अगर कोई लड़का हो तो इन लोगों को कहते हैं कि उनको मार डालना करके। और धीरे 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 मतलब इसराइल लोग का इतना मेहनत करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है कि क्योंकि लगता है कि अरे हमको निकलना पड़ेगा। जब परमेश्वर रास्ता खोलता है और मूसा को चुनता है, मूसा को बुलाता है, और मूसा भी कैसे करता है, प्रभु मैं क्या इस काम के लायक हूं मैं, परमेश्वर ने कहते कि नहीं मैंने तुमको चुना हूं मैं। फिर मूसा इन लोग को अगुवाई करते हैं, कम से कम लगभग ये सारे सब कुछ कम से कम 430 साल इन लोग को लगता पूरा खत्म करके मिस्र से निकलने में। इस बीच में परमेश्वर फिरौन का हृदय को कठोर कर देता है, बहुत 10 महामारियों को भेजता है। सब कुछ होने के बाद अंत में ऐसा करता है, परमेश्वर जो पहलौटे को मैं मार डालूंगा अगर तुम हमारा लोगों को बंधुआई समय नहीं छुड़ाएगा। तब ये कहते हैं कि ठीक है मैं इन सब लोग को जाने दूंगा। तब वे लोग निकलने लगते हैं। उस समय में भी ये मिस्री लोग क्या करते हैं कि चलो ये सब लोग जा रहे हैं, उन लोग को पीछे पड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। अब परमेश्वर क्या करते हैं, लाल समुद्र को खोल देते हैं। सारे इसराइल लोग लाल समुद्र पार करते हैं। जब मिस्री सब लोग आके उस लाल समुद्र में फंस कर सब लोग मर जाते हैं। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया, क्योंकि क्यों, जो परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो इज़ाक का परमेश्वर है, जो याकूब का परमेश्वर है, उन्होंने लोगों को प्रतिज्ञा किया, इन लोगों को प्रतिज्ञा किया, मैं उस बढ़िया देश में मैं ले जाऊंगा जो देश परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। इतना होने के बाद भी लोग इन परमेश्वर के प्रति संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं किया। जैसा हम लोग ने गिनती 14 अध्याय भाई सूर्या ने पढ़ा ना, हम लोग के लिए आप लोग ने ध्यान दिया होगा, 14 अध्याय इन लोग ऐसा कुड़कुड़ाने लगे कि अरे हम लोग क्यों इधर आए, अच्छा रहेगा हम लोग वापस मिस्र में भी चले जाते हैं, चलो हम दूसरा अगुवे के चुनते हैं, नहीं है तो इधर हम लोग मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे सब लोग इधर मर जाएंगे, इन लोग की ये मूसा का पीछे हम क्यों आए भैया। ये सब लोग मिलकर सर फोड़ रहे हैं, उधर परमेश्वर का काम को देखा, परमेश्वर का महिमा को देखा, परमेश्वर का सामर्थ्य को देखा। देखने के बाद वे लोग कह रहे हैं कि चलो हम लोग फिर वापस मिस्र में चले जाते हैं। तब यहोशू और केले कहते कि नहीं, वो जो देश है बहुत बढ़िया देश है, उसमें दूध और मधु हमेशा बहते जाएगा, उस देश ऐसा देश है। फिर भी लोग परमेश्वर का बात नहीं मानते, परमेश्वर प्रति विश्वास नहीं करते, और कभी भी वे लोग जो देश परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया वो देश कभी भी नहीं देखा उन लोग ने। सो ऐसा उनका स्थिति था, इसलिए परमेश्वर मिस्र से कुछ लोगों को बचाया और जो लोग विश्वास नहीं किया नाश कर दिया, परमेश्वर ने नाश कर दिया। 6 पद, वैसे ही स्वर्गदूत, वैसे ही कुछ स्वर्गदूत भी ऐसा ही किया, अपना निजी स्थान छोड़कर अपना मन मर्जी का काम करने लगा। क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत तो आप लोग जानते होंगे, स्वर्गदूत मतलब ऐसा चीज है, वो लोग परमेश्वर के सामने खड़ा होकर परमेश्वर के साथ साथ ये लोग आराधना करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं ना, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने बचा लिया। स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने ऐसा स्थान दिया, अपने साथ रखा है, वे लोग अपना स्थान छोड़कर वे लोग भी स्वर्गदूत भी पाप करने लगा। शुरू से अंत से सृष्टि से पहले भी, ये अगर उत्पत्ति 6 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उधर भी वैसे जब परमेश्वर ने ये न्यू से थोड़ा सा पहले जब परमेश्वर ने देखा, देखकर कहा अरे पाप तो इतना बढ़ रहा है, मैं सबको नाश कर दूंगा सबको। जब परमेश्वर ने न्यू से कहा ये नाव बनाओ, तुम्हारा परिवार और जितना लोग भी हैं लगभग 7 परिवार लोग, सबको उस न्यू में लेके चले जाओ, उस समय भी कुछ लोग हंसे हैं, अरे ये तो पागल हो गए, ये तो ये नाव बना रहे ये। पर न्यू ने परमेश्वर को बात को माना, मानकर वो नाव बनाया, बना के लोग उस पर सुरक्षित था, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उधर भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। वैसे ही ये स्वर्गदूत को भी ऐसा ही परमेश्वर ने क्या किया, पहले तो मिस्री लोगों को नाश कर दिया, मिस्री लोगों को नाश कर दिया, जो लोग विश्वास नहीं किया उन लोगों को नाश कर दिया, बट इधर स्वर्गदूत के लिए अनंत काल के लिए, अनंत उस भीषण का दिन के लिए, वो बहुत खतरनाक दिन है, आके उस दिन के लिए, उस न्याय का दिन के लिए अंधकार में बांध के रखा है परमेश्वर। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा। जिसी रीति से सदोम और अमोरा भी, वे लोग भी वैसे ही किया। उन लोग ने क्या किया, व्यभिचार करने लगा, पराय शरीर का पीछे लगने लगा। पराय शरीर मतलब उस समय ऐसा होता है कि आदमी आदमी को पीछे चलने लगा। जो परमेश्वर ने जो रिश्ता बनाया वो पुरुष और स्त्री का बीच में, बट ये गलत शिक्षक लोग क्या चाहते हैं, ये लोग आदमी आदमी के साथ चले जाओ ऐसा करके, मतलब ऐसा गंदे गंदे काम इन लोग ने किया। ऐसा लोगों को भी आप लोग को मालूम, बहुत लोग को सदोम और अमोरा का कहानी मालूम है, परमेश्वर ने बिल्कुल उन लोग को नाश कर दिया। क्यों? पाप का वजह से, उसको अंधकार में। क्या है हमारे लिए, क्या है? ये तो हम लोग ने देखा मिस्र में, जो लोग विश्वास किया, जो इज़राइल लोग विशेष रीति से परमेश्वर ने मिस्र से उनको निकाला, निकाल के जो लोग विश्वास किया उन लोग को बचा के रखा है, जो लोग विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने नाश कर दिया। वैसे ही स्वर्गदूत का, वैसे ही सदोम और अमोरा का। हमारे लिए क्या है, परमेश्वर ने हम सबको ऐसा एक आत्मिक अवसर दिया है। हम परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, हम सुनने के बाद परमेश्वर ने, मतलब अगर यदि पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करते होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सुनने के बाद परमेश्वर प्रति विश्वास करते हैं। बट ये लोग अगर देखे जाएगा तो, जब ये बातें पढ़ेंगे हम लोग, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये जो सारे जो नाम लिखा गए है इधर, बड़े बड़े नाम हैं, बाहरी रीति से ये सब लोग बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बट अंदरी रीति से लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत विश्वास किया है, हाँ हाँ मैं प्रभु के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना हूँ मैं, ओ अच्छा 2 साल पहले तो मैंने प्रभु के बारे में पूरा सुन चुका हूँ। कभी कभी इच्छा करते हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, कभी कभी इच्छा नहीं करते हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए। वे लोग भी आज के जमाने में जब हम लोग देखते हैं, हम लोग भी वैसा कभी कभी करते हैं। वो वैसे ही शुरू होता है जो पाप है ना, जब कुछ समय हम लोग प्रभु के पीछे चलेंगे और कुछ समय हम लोग ब्रेक लेंगे, जो हमारा मनमर्जी का काम है वो करेंगे। ओ अच्छा ये लोग चर्च से ना, कलीसिया से फोन कर रहा बार बार भैया चर्चाने के लिए है ना, तो हम चर्च चले जाएंगे बस एक संडे, थोड़ा वचन सुन लेंगे, फिर उसके बाद जैसे बाहर जाएंगे हम अपना इच्छा के अनुसार अपना काम करेंगे, हमारा पास प्रभु के लिए समय नहीं है। ऐसा करते करते क्या होगा, हम विश्वास से बिल्कुल हट जाएंगे। कुछ समय तो लगता है कि हाँ मैं प्रभु के साथ हूँ, ठीक है प्रभु तो चर्च में है ना, बाहर तो है नहीं है, जब मैं चर्च आ जाऊंगा ठीक है प्रभु हमारा साथ है, जब चर्च से बाहर जाऊंगा कुछ समय कुछ ब्रेक लूंगा मैं प्रभु से। तो ऐसा लोग भी है, ये हमारे लिए, हम सब के लिए ये बहुत भयानक चीज है। इज़राइल लोग भी वो लग रहे कि अरे ठीक है हम पहुंच गया, जो परमेश्वर ने जो देश प्रतिज्ञा किया हम है उधर, और 5 किलोमीटर चलेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे। क्या वो मालूम, उनकी जो विश्वास है ना 100% नहीं है, बाहरी रीति से उनकी विश्वास है। आप लोग पाइप जानते ना, पाइप जो बिजली का पाइप होता है उसके अंदर कुछ रहता है, खाली है, बट बाहर रीति से हम लोग देखेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया पाइप है ये। उन लोग का विश्वास भी ऐसा ही था, खाली बाहरी रीति से, हाँ मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, कुछ समय में चल रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना मन मर्जी करूँगा, मेरे लिए चिंता करूँगा। वैसा लोग, उन लोग भी वैसे ही किया, वे लोग कभी भी जो परमेश्वर ने उस देश को प्रतिज्ञा किया कभी भी नहीं देख पाया। यूँ हिब्रानियों अगर 3रा अध्याय, बहुत से लोग हिब्रानियों का अध्ययन किया, आप लोग 2रा अध्याय 3रा पद में भी लिखा, हम लोग इस उद्धार से कैसे, इस उद्धार को क्या अनदेखा कर सकते हैं क्या हम लोग, अगर प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास नहीं करेंगे हम लोग, एक दिन जैसा उन लोग का हुआ था हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, नाश हो जाए, हम सब लोग भी नरक जाएंगे। इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है ये सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने बताया शुरुआत में परमेश्वर ने कैसे सारे सृष्टि को बनाया, सारे सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, पाप का कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, फिर भी परमेश्वर ने हम आपको छोड़ा नहीं, फिर भी परमेश्वर ने हमको आपको छोड़ने, परमेश्वर को दया को समझे, परमेश्वर को सामर्थ को समझे। और परमेश्वर इतना करुणामय है, वो अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। किसका? पापों के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने पाप किया नहीं, हमारा पापों के लिए वो इस संसार में आ गया, वो पवित्र जीवन जिया और उस क्रूस पर बलिदान हो गया। सिर्फ बलिदान ही नहीं हुआ, जो परमेश्वर का जो न्याय, परमेश्वर का जो प्रकोप उस क्रूस पर ले लिया हमको और आपको बचाने के लिए। और वो ही प्रभु जो मिस्र से लोगों को निकाला, वो ही प्रभु तीसरा दिन जी उठा है, हमारे लिए एक अनंत आशा दिया, हमारे लिए एक अनंत आशा दिया। जो कोई अपना पाप से पश्चाताप करेंगे, जो पुराना जीवन को छोड़ेंगे, छोड़कर उस परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अनंत जीवन उसका है। जैसा इज़राइल लोग, जैसा स्वर्गदूत लोग, जैसा सदोम और अमोरा का लोग अपना मनमर्जी किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ? नाश। हमारे लिए एक अनंत जीवन है, यदि हम सच्चा दिल से। अगर इधर कोई ऐसा, कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, आप लोग पहली बार आए, आप परमेश्वर को चखके देखिए, परमेश्वर भला है। आप परमेश्वर को चखके देखिए, परमेश्वर भला है। वो दयालु परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे लिए अपना पुत्र को इस संसार में भेजिए। ये काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा ने किया। भैया, उस उद्धार को क्या हम लोग अनदेख कर सकते हैं? अगर यदि प्रभु आपसे बातचीत करते हैं, आप किसी से भी हमसे संदेश के बाद आके बात करिए, पाप से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने आपका बात को नहीं माना। प्रभु, जिस रीति से मैं विश्वासी का जीवन जीना चाहता हूं, मैं नहीं जी रहा। प्रभु, आप मेरे पापों को क्षमा करिए। प्रभु दयालु है, हमारा पास सब कुछ है, सब कुछ हो जाए, और प्रभु नहीं है तो हमारा जीवन का क्या लेना देना है? और हो सकता है आप लोग पूछ सकते हैं कि भैया फिर कैसा, मतलब जैसे हम लोग दुआ भी कर रहे हैं, पिछले हफ्ते दो ऐसा घटना घटी। एक तो है, लगता है कि अरे ये तो बहुत साल से विश्वासी है, बट वो विश्वासी का चिन्ह और विश्वासी का जीवन का जो गुण होना चाहिए उसका अंदर है नहीं। और वैसे ही एक भाई बहुत दूर से आया था, वो बहुत दूर से आने के बाद उसको लगा कि अरे हम तो बहुत अमीर बन जाएंगे आज के दिन के बाद, और पता चला सब कुछ डूब गया। क्यों? पाप का कारण। कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्यों, मतलब ऐसा क्या, ऐसे लोग क्यों होता है, ये पाप में क्यों फंस जाते हैं? अलग अलग कारण है। एक तो संपूर्ण रीति से हम प्रभु के पीछे नहीं चलते, संपूर्ण रीति से प्रभु के पीछे नहीं चलते, हम प्रभु के प्रति विश्वास नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग दुख उठाना नहीं मानते, अरे अगर मैं ऐसा करेगा तो कैसा होगा, मेरा दोस्ती खराब हो जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा परिवार वाले ने छोड़ देंगे। ऐसा भी बहुत से उदाहरण हम देख चुके हैं। और कुछ लोग होते हैं अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते, मतलब दिन प्रतिदिन अपने आप को निरंकार करना और प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के पीछे चलना। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग ऐसा करें। ऐसा ही हमारा जीवन है तो हम पाप का बोझ लेकर हम पहुंचेंगे, मतलब हम तो लगते हैं कि अरे मैं तो पहुंच जाऊंगा स्वर्ग, बट उस आखिरी दिन स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। इस पाप का बोझ अगर हम लोग है ना खुद इस पाप का बोझ लेके हम लोग चलेंगे, हम लोग प्रभु के ऊपर नहीं डालेंगे, लगता है कि हम उस दिन जो आखिरी दिन स्वर्ग जाएंगे, पर हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम नरक जाएंगे हमारा पाप का वजह से। इसलिए यहूदा कह रहा है कि विश्वास में लगे रहो, उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो। गलत शिक्षक लोग, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो गलत बातें हैं वो बातें कलीसिया के लिए भी अच्छा नहीं है, कलीसिया के लिए भी खतरा है, और खुद के लिए भी जो गलत बातें हैं खुद के लिए भी खतरा है। देखिए, अगर यदि हम हमारा पाप को मान ले, प्रभु विश्वास से योग्य है, हमारा सारे पापों से क्षमा कर देते हैं। अगर यदि हम कहते हैं कि मेरे अंदर पाप है नहीं है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। कभी कभी वो बात खुद के समझ में नहीं आता, इसलिए हमको कलीसिया की आवश्यकता है। एक दिन हमारा सब लोग का आशा यही है, जो परमेश्वर ने जो अनंत आशा दिया है, एक दिन वो वापस आएगा और सबको अपने साथ ले जाएगा। बट अभी से उस दिन के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा, आज ही से दिन प्रतिदिन उस दिन के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा। नहीं है तो जैसा इसराइलों का हुआ, जैसा स्वर्गदूत का हुआ, जैसा सदोम और अमोरा का हुआ, वैसा ही हमारा जीवन एक दिन होगा। पर प्रभु में अनंत जीवन है। प्रभु में हमारा सारे पाप धुल जाएगा, अगर यदि सचमुच में हम प्रभु के प्रति विश्वास करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे।